भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारूप अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि श्लोक संख्या 63 पृष्ठ संख्या 552 सब लोग निकालिए मेरे पीछे बोलिए। इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्याद् गुह्येतरम् मया विमृश्येतन् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्याद् गुह्येतरम् मया विमृश्येतन् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्याद् गुह्येतरम् मया विमृश्येतन् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु।
शब्दार्थ बोलिए। इति इस प्रकार ते तुमको ज्ञानम ज्ञान आख्यातम वर्णन किया गया गुह्यात गुह्य से गुह्यतरम अधिक गुह्य मया मेरे द्वारा विमृश्य मनन करके एतत् इस अशेषेण पूर्णतया यथा जैसी इच्छसि इच्छा हो तथा वैसा ही कुरु करो। मेरे पीछे अनुवाद बोलिए। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहो सो करो। यहां धागा लगाकर सब लोग प्रार्थना निकालिए। सब लोग मेरे साथ बोलिए।
ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सह गण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेषाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। श्लोक फिर से निकालिए, श्लोक समझेंगे। भगवान कह रहे हैं इतिते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया। ये ज्ञान जो मैंने तुम्हें बतलाया है वो गुह्य से गुह्यतर है। गुह्य माने गोपनीय, रहस्य छिपाने योग्य, और गुह्यतर का मतलब उस ज्यादा छिपाने योग्य बात है। छिपाने योग्य बातें कुछ होती हैं और कुछ उससे भी ज्यादा छिपाने योग्य बात होती है। तो भगवान कह रहे हैं कि ज्यादा छिपाने योग्य बात मैंने बताई है। विमृशन अशेष्य, इसको संपूर्णता से इस पर विचार करके फिर यथेष्टि कथा करो, जो तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। तो बड़े ध्यान देने की बात है। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, कोई बल प्रयोग नहीं कर रहे हैं अर्जुन के ऊपर कि मेरे आदेश को तुम स्वीकार करो। क्यों? क्योंकि भगवान जीव को स्वतंत्रता देते हैं कि वो अपना स्वतंत्र चुनाव करे कि वो भगवान की शरण में आना चाहे तो आए, और इस संसार में अगर स्वतंत्र रूप से अपनी योजनाएं बनाना चाहे तो बनाए। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की, भगवान ने पहले ही अर्जुन को ब्रह्मभूत ज्ञान बतला दिया है। जो इस ब्रह्मभूत अवस्था में होता है वह प्रसन्न रहता है, ना तो वह शोक करता है ना किसी वस्तु की कामना करता है, ऐसा गुह्य ज्ञान के कारण होता है। हाँ, तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं। हाँ, चूंकि श्लोक में भगवान ने कहा है कि गुह्य से गुह्यतर ज्ञान मैंने बतलाया है, तो इसका मतलब है कि कुछ गुह्य ज्ञान भी है और कुछ गुह्यतर ज्ञान है। तो गुह्यतर ज्ञान जो भगवान ने बतलाया वो पिछले श्लोक में भगवान ने गुह्यतर ज्ञान बताया। गुह्यतर मतलब ज्यादा, जो गोपनीय है, और वो क्या है। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत है। तमेव, उसकी शरण में जाओ सब प्रकार से। किसकी शरण में जाओ? उसके भी पहले श्लोक में, यानी 61वां जो श्लोक है उसमें भगवान ने कहा किसकी शरण में जाओ, जो हृदय में स्थित ईश्वर है यानी परमात्मा है। तो हृदय में स्थित परमात्मा की शरण जाना ये जो है ज्यादा गोपनीय बात है ना। गुह्यतर ज्ञान है ना। नहीं, इसके पहले भगवान ने गुह्य ज्ञान बतलाया था। गुह्य ज्ञान प्रभुपाद जी बताते हैं कौन से श्लोक में है, 55 में नहीं, श्लोक संख्या 54 में गुह्य ज्ञान है। ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, कि कोई व्यक्ति अगर ब्रह्म साक्षात्कार कर ले तो प्रसन्न हो जाता है और शोक नहीं करता है, आकांक्षा नहीं करता है। गुह्य ज्ञान है। तो गुह्य ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान। और गुह्यतर ज्ञान उससे ज्यादा जो गोपनीय है वो परमात्मा ज्ञान है, ठीक है ना। और गुह्यतम ज्ञान क्या है? भगवान का। ज्ञान, भगवत ज्ञान ये गुह्यतम ज्ञान है, है ना। इसलिए इसके बाद फिर भगवान गुह्यतम ज्ञान की भी बात करेंगे। आप देखिए गुह्यतम ज्ञान की बात करेंगे भगवान 64वें श्लोक में, सर्व गुह्यतमं भूया सुनमे परमं वचः। जो गुह्यतम ज्ञान है, है वो सुनो। और फिर 65वें श्लोक में भगवान गुह्यतम ज्ञान बताते हैं क्या, मन मना भव मद भक्तो मदियाजी माम नमस्कुरु, कि मेरे भक्त बनो, मुझ में मन लगाओ, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। तो ये सबसे ज्यादा गोपनीय है भगवान का ज्ञान, है ना। तो उसकी शरण में जाओ, उस परमात्मा की शरण में जाओ। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा जो रहस्य है वो भगवान ने यहां भी नहीं बतलाया, अपने को फिर भी छिपा रहे हैं। कृष्ण जो है अपने को छिपा रहे हैं और कह रहे हैं उस परमेश्वर की शरण में जाओ जो हृदय में स्थित है, सबके हृदय में स्थित है। लेकिन वास्तव में असलियत क्या है, कृष्ण ही है सबके हृदय में स्थित। तो कृष्ण की शरण में जाने का मतलब क्या है, सबसे अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो गया है? तो वो जो है ना सबसे गोपनीय ज्ञान है। तो प्रभुपाद जी इसलिए यहां चर्चा कर रहे हैं, गुह्य ज्ञान क्या है, ब्रह्मभूत ज्ञान, और गुह्यतर ज्ञान क्या है, प्रभुपाद लिखते हैं कृष्ण परमात्मा का ज्ञान भी प्रकट करते हैं, ये ब्रह्म ज्ञान भी है लेकिन ये उससे श्रेष्ठ है, है? ब्रह्म ज्ञान से श्रेष्ठ है, ब्रह्म ज्ञान भी इसमें है, ब्रह्म ज्ञान से भी श्रेष्ठ है। ब्रह्म ज्ञान में क्या है, अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, है ना। तो अपने को जो है महसूस करता है कि मैं जो है नित्य चेतन आत्मा हूं, है ना। तो ब्रह्म ज्ञान तो है लेकिन इससे ज्यादा ऊपर है परमात्मा का ज्ञान। आगे प्रभुपाद लिखते हैं यहां पर, यथेच शशि तथा गुरु, जैसी इच्छा हो वैसा करो, ये सुनिश्चित करता है कि ईश्वर जीव की यत किंचित स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता। भगवान ने कह दिया कि शरण में जाओ और उस परमात्मा की प्रसन्नता से तुम्हें स्थायी शांति प्राप्त होगी और शाश्वत धाम की प्राप्ति होगी। लेकिन भगवान फोर्स नहीं कर रहे हैं कि शरण में जाओ, नहीं, भगवान ने कहा कि विचार कर लो अच्छी प्रकार से और फिर जो है ना तुम हमारी जो अच्छी इच्छा हो वैसा करो। आगे प्रभुपाद लिखते हैं भगवत गीता में भगवान ने सभी प्रकार से ये बतलाया है कि कोई अपनी जीवन दशा को किस प्रकार अच्छी बना सकता है। अर्जुन को उनका सर्वश्रेष्ठ उपदेश यह है कि हृदय में आसीन परमात्मा की शरणागत हुआ जाए। अभी तक जो है भगवान ने जो गुह्यतर ज्ञान दिया है वो यही है। आगे सही विवेक से मनुष्य को परमात्मा के आदेशानुसार कर्म करने के लिए तैयार होना चाहिए। हाँ ये चीज भगवान जब कह रहे हैं कि अच्छी प्रकार से विचार कर लो, इसका मतलब यह है कि सही विवेक से, फिर ये नहीं कि हाँ तो कह दिया हाँ और दिल के अंदर फिर ना, तो ऊपर से हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, और दिल के अंदर जो है लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा अच्छी प्रकार से विचार करके फिर तुम्हारी जो इच्छा हो करो, क्योंकि भगवान हृदय में स्थित हैं। इसलिए भगवान ये नहीं चाहते कि तुम मुंह से कुछ बोलो और दिल में तुम्हारे फिर वही बात हो, क्योंकि वो तो दिल में ही बैठे हैं। तो आपको जब शरण लेनी है तो आपको दिल से ही शरण लेनी पड़ेगी, है ना। इसलिए भगवान अर्जुन से ये नहीं कहते हैं कि नहीं नहीं बोलो हाँ ये करोगे तुम, बोलो हाँ, ये नहीं, क्योंकि आपको अपने हृदय को ही तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि हृदय में है परमात्मा और वो हृदय की ही बात को देख रहे हैं, हृदय की बात को। तो हृदय से अगर आपको शरण लेनी है परमात्मा की तो आपको हृदय से ही विचार करना होगा और हृदय को ही तैयार करना पड़ेगा, ये हृदय में ही स्थित है परमात्मा, है ना। इसलिए भगवान बल प्रयोग नहीं कर रहे हैं, बलपूर्वक आपसे कहो कि हाँ ये करना पड़ेगा, हाँ साहब करूंगा, और दिल में है ना ये क्या जो है ना मेरे ऊपर लाद रहे हैं, ये बोझा जो है ना मेरे ऊपर क्यों डाल रहे हैं, है ना। तो ये नहीं है कि आप दिल में आप जो ना बोझा समझो और तब काम करो, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि विचार करो अच्छी प्रकार से, है कि नहीं, विचार करो, क्योंकि उनकी प्रसन्नता से तुमको शांति प्राप्त होगी, तुम्हारे सब कष्ट दूर होंगे। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि भगवान जो है फोर्स नहीं कर रहे हैं किसी प्रकार से, है ना, कि दिल के अंदर आप जो है बोझा समझो। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि सही विवेक से मनुष्य को परमात्मा के आदेश अनुसार कर्म करने के लिए तैयार होना चाहिए, इससे मनुष्य निरंतर कृष्ण भावनामृत में स्थित हो सकेगा। हाँ, निरंतर हो सकेगा, नहीं तो फिर क्या होगा, निरंतर तो नहीं हो पाएगा। अगर आपसे फोर्स से बलपूर्वक आपसे हामी भरवा ली मैंने कि हाँ ये काम करना पड़ेगा, हाँ साहब करूंगा, और जैसे आपको मौका मिलता है भागने का तो आप भाग जाओगे, है कि नहीं। इसलिए निरंतर अगर कृष्ण भावनावृत में स्थिर रहना है तो आपको अशेष विमृश अच्छी प्रकार से सोच विचार करके काम करना होगा, है कि नहीं। तो इसलिए अच्छा है कि थोड़ा समय चाहे लग जाए लेकिन होना चाहिए क्या, निश्चय, स्थिर निश्चय होना चाहिए। तो ये जो है भगवान चाहते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं जो मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है, क्या, निरंतर कृष्ण भावना भावित रहना सर्वोच्च सिद्धि। अर्जुन को भगवान प्रत्यक्षतः युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। हाँ, भगवत शरणागत होना जीवों के सर्वाधिक हित में है, इसमें परमेश्वर का कोई हित नहीं है। हाँ, अब भगवान जो कह रहे हैं कि मेरी शरण में आओ या परमेश्वर की शरण में जाओ, है ना, तो इसमें उनका कोई भला थोड़ी है, अपनी भलाई के लिए नहीं कह रहे हैं भगवान गीता में अर्जुन से, है, इसमें तो अर्जुन की भलाई है या हमारी भलाई है। इसलिए ये नहीं सोचना कि नहीं नहीं भगवान जो है ना कुछ अपने लाभ के लिए उपदेश दे रहे हैं, इसमें भगवान का कुछ लाभ होगा, नहीं। इसलिए भगवान ने आगे भी कहा है कि ये जो है ना मैं तुम पर विशेष रूप से कृपा करके कहूंगा, इसको सीमित दृढ़ में थी तथो बक्षा में थी, तुम्हारे हित के लिए मैं कहूंगा क्योंकि तुम मुझे बहुत प्यारे हो। तो ये भगवान जो है जो उपदेश दे रहे हैं भगवद गीता में, ये जीव के कल्याण के लिए दे रहे हैं, इसमें उनका कुछ भी भला नहीं है, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, शरणागत होने के पूर्व जहां तक बुद्धि काम करे मनुष्य को इस विषय पर मनन करने की छूट मिली है और भगवान के आदेश को स्वीकार करने की यही सर्वोत्तम विधि है। ऐसा आदेश कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के माध्यम से भी प्राप्त होता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो तात्पर्य के अंत में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं तो आप कह सकते हो कि भाई अर्जुन के सामने साक्षात भगवान है, अब हमें तो आदेश ऐसा नहीं मिल रहा है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें आदेश मिलता है भगवान का कैसे, गुरु के माध्यम से, गुरु साधु और शास्त्र, इनके माध्यम से हमें भगवान का आदेश मिलता है। अब हम श्रीमद् भागवत का एक विशेष प्रकरण सुनेंगे जिसमें परमात्मा की शरण में है कोई जीव जाता है ना। परमात्मा की शरण में जाने का मतलब क्या है, है? तमेव शरणं गच्छ, उस परमात्मा की शरण में जाओ, मतलब मैं उस परमात्मा की शरण में जाता हूँ जो हृदय में स्थित है ना। और भगवान की शरण में जाने का मतलब क्या है, भगवान के तो मेरी शरण में आओ, तो कृष्ण है ना, तो हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, ये क्या है, भगवान की शरणागति, आप समझ रहे हैं। और परमात्मा की शरणागति कैसे, उस परमात्मा की मैं शरण ले रहा हूं तो इसमें थोड़ा दूरी है। और कृष्ण की शरण, तो श्रीमद् भागवत में बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिसमें भक्तों ने कृष्ण की शरण ली, भगवान की शरण ली, है ना, तो वो भगवान का नाम लेकर के और भगवान को पुकारते हैं। जैसे द्रौपदी ने किसकी शरण ली थी, भगवान की, परमात्मा की शरण नहीं ली थी, भगवान की शरण ली थी जो द्वारका में है, और कृष्ण गोविंद इस प्रकार से नाम पुकारा था, तो ये क्या है, भगवान की शरण, है ना। और परमात्मा की शरण, परमात्मा की शरण भी किसी ने ली, है ना। तो कपिल भगवान जो है एक घटना का वर्णन कर रहे हैं, वो घटना क्या है, सभी के साथ होती है, सभी के साथ घटती है, हम जब माता के गर्भ में होते हैं, जीव जो है जब माता के गर्भ में होता है तो परमात्मा की शरण लेता है बहुत कष्ट में। सातवें महीने में जब चेतना विकसित होती है जीव की, तो गर्भ के अंदर बहुत कष्ट का अनुभव करता है। कपिल भगवान बता रहे हैं श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंध के 31वें अध्याय में, इस भयभीत अवस्था में सात आवरणों से बंधा हुआ जीव हाथ जोड़कर उस भगवान से याचना करता है जिसने उसे इस स्थिति में ला रखा है ना? उस भगवान से, तम स्थवीत, तम मतलब परमात्मा, उस परमात्मा के शरण में वो जाता है जी। नाथ माने सिर भीता सत्यवद्रा कृतांजलि स्थवीत तम विक्लवया वाचा ये नो दरे पिता। तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं, जब जीव नारकीय अवस्था को प्राप्त होता है तो वह भगवान से प्रार्थना करता है कि वह पुनः पाप कर्म नहीं करेगा, जिससे वह मां के गर्भ में जाकर जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े। गर्भ के भीतर की नारकीय अवस्था में जीव पुनः जन्म लेने से भयभीत रहता है। अब जीव जो है परमात्मा की शरण लेता है, किस प्रकार से? मैं उन भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूं जो अपने विभिन्न नित्य स्वरूपों में प्रकट होते हैं और इस भूतल पर अवतार लेते हैं। मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूं क्योंकि वे भी मुझे निर्भय कर सकते हैं और उन्हीं से मुझे यह जीवन अवस्था प्राप्त हुई है जो मेरे अपवित्र कार्यों के सर्वथा अनुरूप है। तस्योपसन्नम वितुम जगदिच्छयात नाना तनोर्भुवि चलन चरणारविन्दम सोहम व्रजामि शरणम यकुतो भयम् मे येने दृशि गतिरदर्श सतो नुरूपां। तस्य उपसन्नम, तस्य उपसन्नम का मतलब उस परमात्मा की मैं शरण में हूं, है ना? तो ये क्या हुआ, ये परमात्मा का साक्षात्कार है। तो तात्पर्य में कृपा लिखते हैं, चलत शरणारविंदम शब्द भगवान का सूचक है जो पृथ्वी पर चलते या भ्रमण करते हैं। उदाहरणार्थ भगवान रामचंद्र पृथ्वी पर चले और भगवान कृष्ण भी सामान्य पुरुष की भांति घूमते फिरते थे। अतः यह प्रार्थना उन भगवान से की जाती है जिस पृथ्वी पर या ब्रह्मांड के किसी भी भाग पर साधुओं की रक्षा करने और असाधुओं को नष्ट करने के लिए अवतार लेते हैं। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण का संकेत मिलता है और भगवान अपनी इच्छा से आते हैं इस संसार में। अतः वे जिस रूप में अवतरित होते हैं वो भगवान का सनातन रूप है। जिस तरह परमेश्वर जीव को भयावह स्थिति में डालते हैं उसी तरह वे उसका उद्धार भी करते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के चरण कमलों की ही शरण में जाए। आगे जीव प्रार्थना करता है, विशुद्ध आत्मा रूप में अपने कर्म के द्वारा बंधा हुआ माया के कारण अपनी माता के गर्भ में पड़ा हुआ हूं, मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूं जो यहां मेरे साथ हैं। कौन? परमात्मा, परमात्मा के रूप में मेरे साथ हैं। किंतु जो अप्रभावित हैं इन कष्टों से, वे असीम हैं किंतु संतत हृदय में देखे जाते हैं, मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूं। यस्त्वत्र बद्धैव कर्मभिरामृतात्मा भूतेन्द्रियाशयमयी ममिलम्य माया आस्ते विशुद्धमविकारमखंड बोधम आतप्यमान हृदय वसितम नमामि। तात्पर्य में प्रबलते हैं कि जीवात्मा कहता है मैं परमेश्वर की शरण ग्रहण करता हूं। फलतः स्वाभाविक रूप से जीवात्मा परमात्मा का आश्रित सेवक है। परमात्मा और जीवात्मा एक ही शरीर में बैठे हैं, जैसा कि उपनिषदों का वचन है। वे मित्र के रूप में बैठे हैं, एक तो कष्ट उठा रहा है और दूसरा कष्टों से सर्वथा अलग है। तो शरीर होने के कारण जीव कलमश ग्रस्त है और कष्ट सहता है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि चूंकि भगवान भी उसके साथ हैं इसलिए भगवान के भी भौतिक शरीर है? नहीं, वे परमात्मा जो है इस भौतिक शरीर में होते हुए भी कैसे हैं? अविकारम, अर्थात परिवर्तन रहित हैं। तो जो मायावादी चिंतक हैं दुर्भाग्यवश अपने अशुद्ध हृदय के कारण जान नहीं पाते हैं कि परमात्मा व्यष्टि आत्मा से भिन्न है। हृदय में ही परमात्मा है, व्यष्टि आत्मा संतप्त रहता है क्योंकि उसने अपनी स्वाभाविक स्थिति भुला दी। लेकिन परमात्मा क्या है? महान है, स्वामी है, वे भगवान है। व्यष्टि आत्मा सेवक है, अतः वो भगवान की शरण जाता है, उस समय वो महात्मा या महान आत्मा हो जाता है। अतः ऐसा भाग्यवान जीव जो अपनी माता के गर्भ में ही ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसकी मुक्ति निश्चित है। अब जीवात्मा और क्या कहता है? मैं अपने इस पंचभूतों से निर्मित भौतिक शरीर में होने के कारण परमेश्वर से विलग हो गया हूं, फलतः मेरे गुणों और इंद्रियों का दुरुपयोग हो रहा है। यद्यपि मैं मूलतः आध्यात्मिक हूं, क्योंकि ऐसे भौतिक शरीर से रहित होने के कारण भगवान प्रकृति और जीव से परे हैं, और चूंकि उनके आध्यात्मिक गुण महिमा मंडित हैं अतः मैं उन्हें नमस्कार करता हूं। यह पंचभूत रहिते, यह पंचभूत रचिते रहिता शरीरे छन्नो यतेन्द्रिय गुणार्थ चिदात्मको हम तेना विकुंठ महिमा नमृसिम तमेनम वंदे परम प्रकृति पुरुष यो पुमांसम। तात्पर्य में लिखा है जीव और परमात्मा में अंतर यह है कि जीव प्रकृति के वश में रहता है जबकि परमात्मा प्रकृति और जीव दोनों से परे हैं। जब जीव प्रकृति में रहता है तो उसकी इंद्रियां कलुषित हो जाती हैं, और चूंकि भगवान प्रकृति के वश से बाहर हैं और जीव की तरह अज्ञान के अंधकार में नहीं रह सकते अतः भौतिक गुणों या इंद्रियों से युक्त होने की कोई संभावना नहीं रहती। अपने पूर्ण ज्ञान के कारण उन पर प्रकृति का बस नहीं चलता, उल्टी प्रकृति सदा उनके बस में रहती है। अतः प्रकृति के बस की बात नहीं कि वो भगवान को अपने बस में रख सके। तो इस तरह से प्रभुपाद लिखते हैं कि ये जो मुक्ति है कृष्ण भक्ति के द्वारा प्राप्त की जाती है और शरणागत होने के साथ ही प्रारंभ होती है, इसलिए कहा गया है कि मैं परम पुरुष को सादर नमस्कार करता हूं। जीव आगे प्रार्थना करता है क्या? कि मैं जीवात्मा प्रकृति के वशीभूत रहता हूं, जन्म मरण का चक्र बनाए रखने के लिए कठिन श्रम करता रहता हूं, मैं बद्ध जीवन ये जो मेरा बद्ध जीवन है तो आपके साथ अपने संबंध की विस्मृति के कारण है, अतः बिना भगवान की कृपा के भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में पुनः किस प्रकार में संलग्न हो सकता हूं? यन्मायोर गुण कर्म निबंधन इसमें सांसारिक पति चरण तदभिश्रमेण नष्ट स्मृति पुनरयम प्रवृणीत लोकम योग्या कया महदन ग्रह मंतरेण। तात्पर्य में लिखा है मनुष्य परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करके केवल श्री भगवान की कृपा से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। यहां स्पष्ट कहा गया है कि चूंकि हम भगवान की भौतिक शक्ति के द्वारा आवृत हैं इसीलिए हमारी स्मृति नष्ट हो जाती है। तो ये तर्क किया जा सकता है कि भगवान की परम इच्छा से हमें इस भौतिक शक्ति के अधीन क्यों रखा गया? इसकी व्याख्या भगवद गीता में की गई है जहां भगवान कहते हैं मैं हर एक के हृदय में आसीन हूं और मेरे ही कारण मनुष्य भूलता है या ज्ञान में जीवित रहता है। बद्ध जीव की विस्मृति भी परमेश्वर के आदेश से होती है। जीव अपनी बची खुची स्वतंत्रता का दुरुपयोग प्रकृति पर अधिकार जताने की इच्छा के कारण करता है। स्वतंत्रता का अर्थ है कि मनुष्य इसे ढंग से या बेढंग से इस्तेमाल कर सकता है, फलतः स्वतंत्रता का दुरुपयोग ही माया के वशीभूत होने का कारण है। माया इतनी प्रबल है किसके प्रभाव को पार कर पाना दुष्कर है, किंतु मनुष्य भगवान के शरण में जाकर ऐसा सहज ही कर सकता है। मामेव ये प्रपद्यन्ते, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंदते। जो कोई भी उनके शरण में जाता है वो प्रकृति के कठोर नियमों के प्रभाव को पार कर सकता है। यहां यह स्पष्ट कहा गया है कि जीव उनकी इच्छा से माया के वश में है, और यदि कोई इस पास से छूटना चाहता है तो यह भगवान की कृपा से ही संभव है। भगवान परम पूज्य हैं और जीव उनका शाश्वत दास है। बिना इस ज्ञान के वो भौतिक कार्यों में लगा रहता है, ये अज्ञान या अविद्या कहलाती है। आगे जीवात्मा प्रार्थना कर रहा है, भगवान के स्वरूप अंतर्यामी परमात्मा के अतिरिक्त और कौन समस्त चर और अचर प्राणियों का निर्देशन कर रहा है। जीव कहता है क्या कि परमात्मा के अलावा और कौन है जो सब चर अचर प्राणियों का निर्देशन कर रहा है। वे काल की तीनों अवस्थाओं में उपस्थित रहते हैं। काल की तीन अवस्थाएं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। अतः बद्ध जीव उनके ही आदेश से विभिन्न कर्मों में रहता है, और इस बद्ध जीवन के तीनों तापों से मुक्त होने के लिए मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूं।